किताब भेजी है अहम हिदायत और नसाए हमारे लिए, उसमें से हम पढ़ कर के सुनाते हैं। पहले भी मैंने अरज किया था कि भाई सबसे पहले तो इसका मुखातब हम अपनी ज़ात को समझते हैं कि हम खुद इन हिदायत पर अमल करने के मोहताज हैं। दूसरी बात ये है कि भाई दोस्तों, जैसे किसी को इल्म हासिल करना हो, तालीम हासिल करना हो मुकम्मल, तो मदरसे में दाखला लेता है और उसका जो निसाब होता है, उसके जो उसूल और ज़वाबित होते हैं, उसके मुताबिक वो अमल करता है, तो मदरसे से इसका मकसद इलम का, तालीम का हासिल होता है। अब उन्होंने एक निसाब तैयार किया हुआ होता है, तजुर्बे तजुर्बात की रोशनी में। जैसे हमारे यहाँ मदारिस में दरस निज़ामी चलता है बहुत मुद्दत से, और एक कामयाब निसाब है कि हज़ारों उलमा इसको पढ़कर तैयार हुए। इसी तरह जो है ये लाइन जो है इस्लाह नफ्स की, जिसका नाम तसव्वुफ़ रखते हैं, इसमें भी कुछ उसूल और ज़वाबित हैं। इसकी पाबंदी के साथ हम चलेंगे तो फिर जो मकसद है निस्बत यानी अल्लाह से ताल्लुक़, मर्तबा एहसान का हासिल होना, तक़वा तहारत, ये जो फवाइद हैं हासिल होते हैं जब हम उसूल के साथ चलते हैं कि तजुर्बात की रोशनी में ये उसूल हमारे बुज़ुर्गों ने मुरत्तब किए हैं। ये बतौर मुकदमा के हमने कहा। इसमें एक उसूल ये भी है जो है ये कि तौहीद मतलब, इनका एक है उसूल तौहीद मतलब। तौहीद मतलब का मकसद मतलब ये है कि जिससे इस्लाही ताल्लुक कायम किया है, जिससे इस्लाही ताल्लुक कायम किया है, तो वो ये अकीदत रखे कि मेरी इस्लाह इसके ज़रिए से होगी, चाहे दूसरे मशाइख मौजूद हो बस्ती में या दूसरी जगह पर, इससे इनकार नहीं। बड़े बड़े बुज़ुर्ग मौजूद होते हैं, जैसे इसकी मिसाल हम देते रहते हैं कि भाई फैमिली डॉक्टर, अब आदमी ने अपना एक फैमिली डॉक्टर रखा है कि जब भी वो बीमार होता है तो अपॉइंटमेंट लेकर के उसके पास जाता है, क्योंकि वो फैमिली डॉक्टर उसका इसकी तबीयत से वाकिफ है, इसकी तबीयत से वाकिफ है, तो वो फिर सही रहनुमाई करेगा। बाकी दूसरे बड़े बड़े डॉक्टर मौजूद होते हैं, वो इनकार नहीं करता कि भाई बस्ती में या इससे करीब दूसरे बड़े बड़े डॉक्टर नहीं, सर्जन होते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोगों की सर्जरी यहाँ बाटली में होती है, लेकिन अब जो है पिंडरफिल है, लीज है, दूसरी जगह पर बड़े बड़े डॉक्टर हैं माशाल्लाह, अपने फन के माहिर हैं, लेकिन जब छोटी छोटी कोई बीमारी होती है तो हम पहले से वहाँ नहीं पहुँच जाते, अपने ही डॉक्टर से मशवरा लेते हैं सलाह। अब ये तरगीब के लिए एक बात कहता हूँ अभी कि मैं यानी यहाँ आने से पहले समझे तकरीबन 1 बजे फोन, हमारे एक मुतालिक का फ़ोन आया, समझे उसने 10 मिनट तक बात की वो फोन पर, समझे, अपनी इसलाह ही बात, वो बात चीजें उन्होंने हमारे सामने पेश की, समझे, जिसमें इनको उलझन थी, समझे, ये कल्ब की लाइन ही की थी दिल की, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह मशवरा दिया तो उसको इत्मीनान हो गया। नहीं बात क्यों, इसलिए कि हम उसकी तबीयत से वाकिफ हैं, तो उसके लिए ये जो है दवा मुनासिब है। नहीं बात तो बहरहाल ये बुजुर्गों के यहाँ एक तरीक है इसमें तौहीद मतलब, ये मैंने इसलिए कह दिया कि बहुत से लोगों को इश्काल होता है कि भाई सारे मशाइख कुरान और हदीस की रोशनी में ही इस्लाह करते हैं, वो कुरान हदीस की रोशनी में बुज़ुर्गों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको इजाज़त है बुज़ुर्गों की तरफ से, फिर ये एक ही तरीक़े से इस्लाह को क्यों कहते हैं। नहीं बात तो वो तजुर्बे की रोशनी में, नहीं बात कि बाज़ मरतबा आदमी हर्जाई हो जाता है तो फिर वो परेशान रहता है, फिर वो किसी तरफ का रहता नहीं है, नहीं बात, इसलिए ये नहीं कि दूसरे बुज़ुर्गों से हम बदअक़ीदत हैं, नहीं बात कि दूसरे बुज़ुर्गों को नस्बत नहीं हासिल है, उनको भी नस्बत हासिल है अपने मशाइख से, समझे, इजाज़त हासिल है, इससे इनकार नहीं, लेकिन इस्लाह के सिलसिले में आदमी एक से ताल्लुक़ रखता है, ये बुज़ुर्गों ने अपनी रोशनी में कहा है, तो उसी को आज बयान करना है। और फिर दूसरा ये तौहीद मतलब के मुतालिक खुतबे आलम हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते थे, हमारे सिलसिले में मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह सब जानते हैं, समझे, बात कि अगर अल्लाह ताला शानहु सारे औलिया को एक जगह जमा फरमा दे, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला शानहु सारे औलिया को एक जगह जमा फरमा दे, वहाँ हजरत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी हो, हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह भी हो, हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह भी हो, सभी औलिया जमा हो और हमारे हाजी साहब भी हो, हमारे हाजी साहब से मुराद हाजी इमदादुल्लाह साहब, इनके पीर चूँके हाजी इमदादुल्लाह साहब थे, सुनने की बात, हमारे हाजी साहब भी हो तो हम तो हजरत हाजी साहब की, हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, सारे औलिया जमा हो, सुनने की बात, इसको तौहीद मतलब कहते हैं। किसी और की तरफ इल्तिफात भी नहीं करेंगे, हाजी साहब का जी चाहे तो वो उनकी तरफ देखे, देखिए हाजी साहब को का जी चाहे तो वो इन औलिया की तरफ देखे, इनकी सोहबत में रहें, यही बात, क्योंकि वो उनके भी बड़े हैं, हाजी साहब को चाहें तो वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं, जुनेद बगदादी हैं, इन सब की सोहबत में जाएं, इनकी तरफ देखें, क्यों, वो इनके भी बड़े हैं, नहीं बात, लेकिन हमें तो जो कुछ लेना है हाजी साहब ही से लेंगे, ये है शेख से अकीदत, कि हमें तो जो कुछ लेना है हाजी साहब से ही लेंगे, हमें तो फैज़ मिलेगा तो अपने शेख ही से मिलेगा, भाई हमें तो हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह से मतलब है, तो इस तरीक़े में निस्बत में कुव्वत हासिल करने का एक ज़रिया तौहीद मतलब भी है। फैज़ से मुराद ये है कि अल्लाह की तरफ से जो हमें एक निस्बत मिली है, अल्लाह से जो एक ताल्लुक़ मिला है, इसमें कुव्वत, तो इसका एक जरिया तौहीद मतलब भी है। और यहाँ बार बार मैं कहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे बुजुर्गों से बदअक़ीदत हो जाए, उनसे बदअक़ीदत हो जाए, उनसे ताल्लुक रखे, मोहब्बत रखे, वो भी बड़े हैं, समझे। ये तो सिर्फ अपनी इस्लाह के लिए हम एक से ताल्लुक रखें ताकि हमारे कल्ब की इस्लाह हो, समझे। अब एक आदमी बीमार है तो इस डॉक्टर से भी दवा लेता है, दूसरे डॉक्टर से भी दवा लेता है, इसकी भी दवा इस्तेमाल करता है, उसकी भी करता है, वईद की भी करता है और हकीम की भी करता है। अब एक बीमारी है मसलन शुगर की, अब वो अपने डॉक्टर से भी दवा लेता है, दूसरे से भी लेता है, वईद की भी इस्तेमाल करता है, समझे, और हकीम की भी इस्तेमाल करता है, समझे सब। और वो ये सोचता है कि हमें तो भाई सेहत मकसूद है, ये भी हकीम ये भी डॉक्टर सबकी दवा लेता है, तो नतीजा क्या होगा, रिएक्शन होगा, रिएक्शन ये होता है बिल्कुल। वो बेचारे भोले भाले होते हैं, अब किसी ने ये कहा कि भाई ये डॉक्टर बहुत अच्छा है इस बीमारी के लिए, उसके पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे, इसके पास, नतीजा ये होगा कि वो बीमार ही रहेगा, बल्कि बाज मरतबा तो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है। तो यही हाल इसका भी है भाई दोस्तों, हमें अपने कल्ब की इस्लाह मकसूद होती है, जैसे जिस्म की इस्लाह होती है इसी तरह अपने दिल की इस्लाह मकसूद है। तो इसमें भी एक तरीक है अल्लाह की तरफ से, एक सिस्टम होता है। तो एक तो तौहीद मतलब, दूसरा औराद व अशगाल का अहतमाम बाकी रखें। पहले भी हमने बताया था औराद और अशगाल, इसमें दो में फ़र्क है। औराद वीरद की जमा, इसका मतलब तो ये कि वो दुआएं, वो वजीफ़ा जो हदीस शरीफ से साबित है और सब पढ़ते हैं, मसलन तीसरा कलमा है, दरुश शरीफ है, अस्तग़फिरुल्लाह है, इसकी तस्बीहात, ये इसको औराद कहते हैं। और एक है अशगाल, अशगाल की मिसाल बड़ी, जैसे ज़िक्र जहरी, ज़िक्र जहरी उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो हदीस से साबित है, अफजल ज़िक्र कौल ला इलाहा इल्लल्लाह, के ज़िक्र में अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन ये गर्दन हिलाना, मखसूस तरीके से बैठना, फिर मखसूस तादाद, मसलन 200 मरतबा जो भी हो, ये शेख बताता है, तो इसको शुगल कहते हैं, इसको शुगल। अशगाल हमने भी, हमने बार बार कहा कि भाई हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के पास हमने सीखा था खुद, और फिर हजरत ने हवाले कर दिया था मौलाना अहमद लूलाद साहब को, उस वक्त वो हजरत के खलीफा खास थे, वो सिखाते थे, तो फिर उनके हवाले कर दिया, तो उन्होंने सिखाया, इसको अशगाल कहते हैं, ये शुगल कहते हैं, समझे ना। तो वो उसमें जिक्र तो साबित है, लेकिन ये हयात जो है ये एक इलाज होता है, समझे, तो वो शेख बताता है, समझे। वो हर एक नहीं करते, जिसको इजाज़त होती है तो वो करते हैं, समझे। तो अशगाल की जिसको इजाज़त हो यानी ज़िक्र जहरी की, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, ये बताना चाहते। हज़रत शेख क़ुतुब आलम हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का तस्किरा करते हुए लिखते हैं, हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का तस्किरा करते हुए कि शेखुल मशाइख होने के बाद भी आखिर ज़माने तक सुना है कि ज़िक्र जहरी नहीं छोड़ा, ज़िक्र बिल जहर नहीं छोड़ा। मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह तो शेखुल मशाइख हो गए, इनके हाथ पर कितनों ने बैत की इजाज़त, लेकिन उसके बावजूद जो है इसको नहीं छोड़ा आखिर तक, आगे लिखते हैं हजरत शेख लिखते हैं कि मैंने अपने अकाबिर में मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, रायपुरी नवरल्लाहु मरकदहू को शदीद बीमारी से कुछ पहले तक, शदीद बीमारी से कुछ पहले तक, और शेखुल इस्लाम हज़रत मदनी अलैहि रहमा और अपने चचा जान को देखा, यानि मौलाना इलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह को, कि बहुत एहतमाम से ज़िक्र बिल जहर करते रहे और मशाइख के सलूक का तो ये मकूला मशहूर है कि जिस चीज़ की बरकत से यहाँ तक पहुँचे अब इसको छोड़ते हुए शर्म आती है। मशाइख कहते हैं कि ज़िक्र बिल जहर की बरकत से ही हम यहाँ तक पहुँचे, तो जिस चीज़ की बरकत से हम यहाँ तक पहुँचे इसको छोड़ते हुए शर्म आती है। बहरहाल खिलाफत व इजाज़त न तो किसी उजब और बड़ाई का सबब होना चाहिए और न उसके बाद तसाहुल और तगाफुल होना चाहिए कि इससे ये दौलत जाती रहती है। ये नहीं कि किसी को किसी शेख की तरफ से खिलाफत और इजाज़त मिल गई तो अब इसको छोड़ दे और उजब में मुब्तला हो जाए कि भाई अब हम तो पहुंच गए, अब ज़रूरत नहीं है, समझे, वरना ये दौलत जाती रहती है। तो दूसरे नंबर पर हमें ये हिदायत फरमाई कि भाई जिक्र शुगल को न छोड़े। तीसरे नंबर पर इज्तनाब मासियत हो, जिक्र का तकरार हो। तीसरी बात ये बताई कि भाई गुनाहों से परहेज, औराद और अशगाल की पाबंदी के साथ हर किस्म के मासी गुनाहों से बचने का अहतमाम करना चाहिए, बिलखुसूस खलवत में अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करें, यानि खलवत तन्हाई में जी ऐसी जगहों से परहेज़ करें कि जहाँ गुनाह में मुब्तला हो जाने का अंदेशा हो। और आजकल जो वबाल हैं इसके मुतालिक ख़ास तौर पर लिखा है, मोबाइल के इस्तेमाल में बहुत चौकन्ना रहे। आजकल चूँकि मोबाइल के इस्तेमाल से बहुत सी खराबियां वजूद में आ रही हैं तो कहा कि ज़रा चौकन्ना रहे। फेसबुक और इसी तरह यूट्यूब वगैरह इन फजूलियात से बहुत मोहतात रहे। ये आजकल ये यूट्यूब पर जो प्रोग्राम आते हैं, यही बात, बहुत ही बचने की ज़रूरत है, वाकईतन समझे, वाकईतन ज़रूरत है, यही बात, इसलिए कि इतना इलम नहीं होता, वो खरा खोटा इसकी तमीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि इस्लाम के नाम पर सारे प्रोग्राम होते, इस्लाम के नाम पर सारे। तो फिर एक तो हमें याद रहे अखलाक और आमाल की खराबी, ये तो है ही खराबी, यानी गुनाह है इसमें बस अखलाक आराम। लेकिन अब जो है मैं जो है सुनी सुनाई बात नहीं, पक्की बात करता हूँ कि यूट्यूब के ज़रिए से अकीदे ख़राब हो रहे हैं, बिल्कुल पक्की बात। क्यों? इसलिए कि प्रोग्राम देखते हैं, सही कुरान हदीस का इलम नहीं होता है तो उधर माइल हो जाते हैं, माइल हो जाते हैं, नहीं बात, तो अकीदे की खराबी जो है ये बड़ी खराबी है, ये समझ नहीं बात जी। उसके बाद ईमान बचाना मुश्किल हो जाए। आमाल और अखलाक की खराबी में अगर हराम को आदमी हराम समझे तो ईमान से नहीं जाता, समझ नहीं बात। हराम को हराम से, लेकिन अकीदे की खराबी बाज़ मर्तबा आदमी को ईमान से खारिज कर देती है। और ये खराबी क्यों वजूद में आ रही है? वो इंटरनेट के ज़रिए से, इसलिए कहते हैं कि बहुत चौकन्ना रहे, समझ नहीं बात। आँखों की खयानत से भी बचने का अहतमाम करें। हज़रत जी मौलाना ईमान इनामुल हसन साहब फरमाते थे कि अल्लाह ताला ने एक आँख लोगों की खूबी देखने के लिए, एक आँख अल्लाह ताला ने लोगों की खूबी देखने के लिए भलाइयाँ, और दूसरी आँख अपने अयूब देखने के लिए दी है। अल्लाह, एक आँख तो अल्लाह पाक ने इसलिए दी है कि हम लोगों के अच्छाइयाँ देखें, भलाइयाँ, और दूसरी आँख इसलिए देखी दी है ताकि हम अपनी बुराइयाँ देखें, अपने अयूब, लोगों के अयूब न देखें। कहते आँख के अलावा जुबान भी वो उज्व हैं जिससे बकसरत गुनाह होते हैं, लिहाजा ज़ुबान की बहुत हिफाजत करें जी। ख़ास तौर पर किसी की गीबत हो जाए इसका ध्यान रखें। कहते हैं आजकल वो ज़ुबान से गीबत बहुत हो जाती है। हमारे एक उस्ताद ने गीबत से बचने का बहुत अच्छा इलाज बताया था, तजुर्बा। वो कहते हैं कि मजलिस में बैठे हो तो खामखा किसी का जिक्र मत छेड़ो। मजलिस में बैठे हैं तो खामखा, ज़रूरत नहीं है, किसी का नाम लेकर के उसका जिक्र न छेड़ो। क्यों? आपने एक आदमी का नाम लेकर के तस्किरा तबसरा शुरू किया कि भाई फलां साहब बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह, ये खिदमत करते हैं, ये करते हैं, आपने अच्छे गुमान के साथ शुरू किया, लेकिन मजलिस में एक ऐसा आदमी बैठा है जो इसके ख़िलाफ़ है, जो इसके ख़िलाफ़, तो वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो फौरन उसकी बुराई बयान करेगा। तो भाई खामखा ये तो गीबत सुनने का ज़रिया बने, ज़रूरत हो तो और बात है, किसी का नाम लेकर के उसके जिक्र करने की ज़रूरत हो तो ठीक है, सही बात, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, खामखा हमने उसका जिक्र छोड़ दिया। अब मजलिस में ऐसा आदमी बैठा है जो सुन नहीं सकता इसकी भलाइयाँ, उसकी खूबियाँ, तो फौरन जो है तरदीद करेगा, वो कहेगा कि भाई रहने दो, हमें मालूम है, वो फौरन कहेगा कि रेवा दियो, हमें बड़ी खबर है, इन्हें पाछली वस्तु हमें बड़ी खबर है, अब वो शुरू कर दे, समझे ना। तो ये खामखा हुआ ना, खामखा हमारे उस्ताद ने ये नुस्खा बताया था कि भाई ज़रूरत ना हो तो किसी का जिक्र मत छेड़ो, हाँ ज़रूरत हो तो और बात है। और दूसरे नंबर पर ये गीबत कभी बोहतान तक पहुंच जाती है, ये भी तजुर्बा हो कि एक आदमी एक बुराई में मुबतला नहीं है, एक आदमी एक बुराई में मुबतला नहीं है, नहीं बात, और हमने अदावत की वजह से बुराई को उसकी तरफ मंसूब कर दिया, होता है ना, कि मसलन एक आदमी ने चोरी नहीं की, मिसाल चोरी नहीं की है, नहीं बात, और अदावत की वजह से हमने चोरी को इसकी तरफ मंसूब कर दिया, एड़े चोरी कर ली, तो अब ये बोहतान हुआ, और बोहतान बड़ा गुना। कंस की आयतें हम नहीं देखते, वही ताना देते हैं बची, फिर इल्जाम। वो इल्जाम पर मुझे एक बात याद आ गई, गालिबन अबू दाऊद शरीफ जो है इसकी शरह दुर्रुल मंजूद में है ये किस्सा लिखा हुआ, कि एक बांगी थी मदीना मुनव्वरा में, सवन लोग काली कलोटी बिचारे, वो जो हैं वो हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास आकर बैठा करती थी कभी कभी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। तो वो चंद अशार भी पढ़ती थी, चंद अशार पढ़ती थी, उसमें गालिबन वो कहती थी कि ये चील का मुझ पर बड़ा एहसान है। चील जानते होने हो? तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछ लिया कि भाई क्या माजरा क्या है, तो उसने बताया कि मैं मदीना से दूर एक देहात में एक आदमी के यहाँ खादिमा थी, बांधी थी, यही बात। तो इनके यहाँ छोटी सी बच्ची थी जिसके गले में हार था, गले में हार था, वो खेलने गई तो वो हार टूट गया और गुम हो गया, मिला नहीं। तो घर वालों ने मुझ पर वहम किया कि बांदी ने चुराया, ये बांदी ने चुराया, घर में यही रहती है, और मुझे बहुत मारी, बहुत पिटाई की, मेरी बहुत पिटाई की, नहीं बात। तो मैं घर में से निकल गई, नहीं बात। और बहरहाल तो ये हुआ ये था कि वो हार जहाँ ये खेलने गई थी वहाँ टूट करके गिर गया था, नहीं बात। तो चील आई, नहीं बात, ईगल, वो आकर इसको ले गई, नहीं मान, कोई खाने की चीज समझ करके, वो समझी कि ये कोई कीड़ा मकोड़ा है, सांप मरा हुआ, नहीं मान, तो उसको चोंच में ले गई, नहीं मान। और फिर उसके बाद ऊपर उसने देखा होगा कि ये तो हार है, तो फिर वापस आकर वहीं फेंक गई, नहीं मान, वापस आकर के वहीं फेंक गई, नहीं मान जी। तो मुझे छुटकारा मिला एक घर वालों से, समझे। तो फिर मैं चुपके से निकल आई, समझे, मदीना, समझे। और मदीना आकर के ये मुसलमान हो गई। अल्लाह पाक ने इसकी तकदीर में हिदायत लिखी थी तो ये किस्सा बना, समझे। वह मदीना आ गई और मैं मुसलमान हो गई। तो वो चंद अशार पढ़ती थी, तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के जहन या ना समझ में नहीं आता था, तो एक दिन पूछ लिया कि इसका माजरा क्या है। तो बहरहाल मेरे कहने का मंशा है कि देखो ये गलत फहमी है, सुएजन के बुनियाद पर इस बांदी को बहुत मारा बेचारे, पिटाई और इल्ज़ाम लगाया। तो ये गीबत कभी इल्ज़ाम तक पहुंच जाती है, और झूठा इल्ज़ाम ये बड़ा गुनाह है। तो कहा कि ज़ुबान की हिफाजत करें, कभी बड़े बड़े गुनाह इससे हो जाते हैं, यही बात। कान का इस्तेमाल भी सही हो, दिल की तरफ भी ध्यान रखे जी, अपने आप को हसद, बदगुमानी, अदावत, हिर्स, तमा, लालच, इशराफ़ नफ्स वगैरह बीमारियों से, रूहानी बीमारियों से बचाए रखें। इशराफ़ नफ्स यानी नफ्स का झांकना, सुनिएगा क्यों, इसलिए कि मासी से निस्बत का नूर कम होता जाता है। मासी से होता क्या है कि अल्लाह से जो ताल्लुक जिसको निस्बत कहते हैं इसका नूर कम होता जाता है, और अल्लाह बचाए बसा औकात ये नूर बिल्कुल बुझ जाता है। अगर शेख रहमतुल्लाह अलैह निस्बतों के ज़हन में लिखते हैं कि जब तक तेल और बत्ती रहेगी यानी औराद और अशगाल का अहतमाम होगा कि यही चीज़ें मशअल हिदायत के लिए तेल के बराबर है, मशअल माने चिराग, तो जब तक ये चीज़ें रहेगी निस्बत बाकी रहेगी समझे, और बाद मुखालिफ यानि गुनाहों वगैरह से हिफाजत की भी ज़रूरत है कि बाद मुखालिफ से चिराग गुल हो जाता है। दो बातों की ज़रूरत, और पुराने ज़माने में चिराग होता था वो कब जलता था, उसमें तेल हो और बत्ती हो तो वो जलता रहता है, लेकिन दूसरी तरफ जो है उसको मुखालिफ हवाओं से भी बचाना पड़ता था, इसीलिए वो चिराग जो होता था उस पर चिमनी चढ़ा देते थे यानी ग्लास ताकि वो हवा से बुझ न जाए। तो कहा कि दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, अल्लाह ने जो ये निस्बत दी है तो इसको बचाने के लिए एक तो जिक्र शुगल तिलावत नमाज ये बाकी रहा, और दूसरी तरफ गुनाहों से हिफाजत। बहरहाल ये सारी नसीहतें हमारे लिए हैं आज की मजलिस में, नहीं बात। तो तीसरे नंबर पर गुनाहों से बचना, नहीं बात। अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों की बातों पर अमल की हमें तौफीक नसीब फरमा, और अल्लाह ताला ने हमें जो ईमान दिया है इस्लाम दिया है और इसके साथ साथ जो एक दौलत दी है निस्बत की यानी ताल्लुक माल्ला की, अल्लाह ताला इसको बाकी रखे, इसमें तरक्की नसीब फरमा। निस्बत की चार किस्में हैं, हम बार बार कहते हैं कि कभी सुनाएंगे इंशाल्लाह, आप बीती में हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।